नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से संबंधित 3 विधेयक सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से देश में 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में इस वर्ष 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए और दिल्ली पुलिस ने रोजगार और निवेश धोखाधड़ी मामले में राजस्थान से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के 8वीं विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होगा।
कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की 2 रिपोर्ट और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित 1 अधिसूचना सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त समयबद्ध सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से संबंधित 3 विधेयक भी 8वें विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी सदस्यों से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने और 3 दिवसीय सत्र को सार्थक और उत्पादक बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। आज नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है।
19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
श्री जोशी ने गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के बारे में कहा कि देश वर्ष 2030 तक 500 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के सतत ऊर्जा भविष्य के लिए तकनीकी रोडमैप भारत के ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकल्प 2030-2047 को जारी किया गया। श्री जोशी ने अत्याधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने इस अवसर पर कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि SAF एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित विमानन ईंधन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पीतमपुरा स्थित सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
इस लैब के माध्यम से स्कूली छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी आधुनिक तकनीक और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का हर विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करे, यही दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने बल देते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे प्रत्येक छात्र भविष्य की वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह इनोवेशन लैब सार्वजनिक निजी भागीदारी जन भागीदारी की उस शक्ति का उदाहरण है जो सरकारी विद्यालयों में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रही है। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
दिल्ली शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज सचिवालय में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। श्री सूद ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान शहर में बिजली की तैयारियों का जायजा लिया गया और बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली के हर निवासी के लिए बिना रुकावट, भरोसेमंद और कुशल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कला तथा संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज आगामी पंजाबी साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस आयोजन के माध्यम से पंजाबी भाषा, साहित्य, संगीत और समृद्ध विरासत को और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी भी संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर सके। श्री सिरसा ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में हर भाषा, संस्कृति और परंपरा को पूरा सम्मान मिले। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खेरवार ने आज नजफगढ़ जोन के अंतर्गत द्वारका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्वच्छता और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री खेरवार ने अधिकारियों को नियमित रूप से कूड़े को हटाने और उच्च स्तर की साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। वस्त्र मंत्रालय कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का जश्न मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता देना है। मंत्रालय के अनुसार समारोह का प्रमुख आकर्षण संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों का वितरण होगा। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। समारोह के दौरान अर्थ रूट थ्रेड, ऑल डायड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इसके साथ ही पुरस्कार विजेता हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने रोजगार धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश कर राजस्थान के जोधपुर से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ये मामला टेलीग्राम आधारित पार्ट टाइम रोजगार और निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रोजगार धोखाधड़ी के नाम पर लोगों से लगभग 3 लाख की ठगी की। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 7वीं पुण्यतिथि पर वसंत उद्यान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि सुषमा स्वराज का स्नेह, आत्मीयता और प्रत्येक कार्यकर्ता पर उनका अटूट विश्वास आज भी सभी की स्मृतियों में जीवित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से शिवाजी स्टेडियम तक यात्रा की। इस दौरान श्री यादव ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम की बेहतरीन सेवाओं की सराहना की और स्वच्छ सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रीवा सोलर प्लांट के साथ इसके जुड़ाव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जुड़ाव टिकाऊ शहरी परिवहन के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ, जिसमें देश के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पदक और पुरस्कार जीते। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को मौके, सुविधाएं और साथ मिले तो वे काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस 1.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को बेहतर बनाने और सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं देने के लिए काम किया है।
हमारा देश जो एक युवाओं का देश है, यहाँ के बच्चों को अगर मौका मिले, सुविधाएं मिले, प्लेटफॉर्म मिले तो वो बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंचने की ताकत रखते हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने सभी इन स्टूडेंट्स को, 1000 स्कूल जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत चलते हैं, इस 1.5 ईयर ऑफ अवर टेन्योर हमने ये कोशिश की है कि दिल्ली में एजुकेशन को एक अलग जगह लेके जाया जाए, जहाँ पर हमारे इन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हम बेहतर सुविधाएं दे सके।
दिल्ली में इस वर्ष 4 अगस्त तक 137 दिन स्वच्छ वायु वाले दर्ज किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए विभिन्न उपाय लगातार किए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार 2,243 मीट्रिक टन निर्माण और अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह और निपटान किया गया है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए हैं। सरकार ने बताया कि 81 सड़क सफाई वाहनों ने 2,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों की सफाई की है और 169 मीट्रिक टन सड़क की धूल है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कहा, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इस वर्ष 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए। और दिल्ली पुलिस ने रोजगार और निवेश धोखाधड़ी मामले में राजस्थान से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।